अति व्यस्त शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला। महाराज जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैराथन का जो महीना है भगवत गीता मैराथन, महाराज कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रहे हैं और पंजाबी बाग मंदिर पर भी कृपा की। आप सब भक्तों से निवेदन है, अपना मोबाइल फोन प्लीज स्विच ऑफ या साइलेंट पे कर दें और बहुत ही ध्यान पूर्वक महाराज जी के संग का हम पूरा लाभ उठाएं। हरे कृष्णा। और सभी भक्तों से निवेदन है, अभी भक्त लोग और भी आएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे आगे आ जाइए, जगह बहुत है यहाँ पे। प्लीज सभी प्रभु जी लोग आगे आगे शिफ्ट हो जाएं और माता जी भी आगे आगे आ जाएं। अभी भक्त लोग और आ रहे हैं पीछे से, इस तरफ काफी जगह है, प्रभु जी लोग यहाँ भी आ सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। जोर से हरे कृष्ण। ठंड है हा? श्रीमद्भागवतम छठा स्कंध पांचवा अध्याय श्लोक 44 में लिखा हरे कृष्ण। सबको सुनाई दे रहा है, श्री शुक उवाच प्रतिजग्रह बादाम नादाम साधो सम्मतः एतावान् साधो वादो हि विशिष्टेश्वरा स्वयं श्रीशुक उवाच प्रतिजग्रह तद्भदम् नारसाधुसम्मतः इतवान् साधु वदो हि क्षेत्रेश्वर स्वयं प्रतिजग्रह तद्भदम् साधु वधोषेश्वर स्वयं प्रतिजग्रतम नाद साधु समतावन साधु वधो
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्लोक को ही दोहराएंगे।
Shukavacha.
माता जी
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदान स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा प्रति जग्राह स्वीकार किया तत् वह बाणम तथास्तु नारदा नारद मुनि साधु सम्मतः जो माने हुए साधु हैं एतावान इतना साधुवादः साधु पुरुष हे निस्संदेह तितिक्षेत वह सहन कर सके ईश्वरः यद्यपि प्रजापति दक्ष को शाप देने में समर्थ स्वयं स्वयं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन, चूंकि नारद मुनि माने हुए साधु पुरुष हैं, अतः जब प्रजापति दक्ष ने उन्हें शाप दिया तो उन्होंने उत्तर दिया तत् बाडम, ठीक तुमने जो भी कहा उत्तम है, मैं इस शाप को स्वीकार करता हूँ। वे चाहते तो उलटकर प्रजापति दक्ष को शाप दे सकते थे, किंतु उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि वे सहिष्णु तथा दयालु। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 3.5.21 में कहा गया है, तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांतः साधवा साधु भूषणा। साधु के लक्षण है कि वह सहिष्णु दयालु तथा सभी जीवों के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत होता है, वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण उदात्त होते हैं। चूंकि नारद मुनि सर्वाधिक उच्च साधु या भक्त हैं, अतः उन्होंने प्रजापति दक्ष का उद्धार करने हेतु उस शाप को मौन भाव से सह लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को इसी सिद्धांत की शिक्षा दी है, त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि अपने को रास्ते के तिनके से भी तुच्छ समझकर मन में विनम्र भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित होना चाहिए तथा दूसरों को आदर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में वह भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन कर सकता है। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हुए संसार भर में या सारे ब्रह्मांड में भगवान की महिमा का प्रचार करता है, उसे घास या तिनके से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। प्रचारक आरामदेह जीवन नहीं बिता सकता, क्योंकि प्रचारक आरामदेह जीवन नहीं बिता सकता। निसंदेह प्रचारक को अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। वह कभी कभी ना केवल शापित होता है अपितु उसे शारीरिक चोटें भी सहनी पड़ती हैं। उदाहरणार्थ जब नित्यानंद प्रभु जगाई तथा मधाई नामक दो उचक्के भाइयों के पास कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने गए तो उन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई जिससे उनके सर से खून बहने लगा था। फिर भी उन्होंने सहिष्णुता पूर्वक उन दोनों उचक्कों का उद्धार किया जिससे वे पूर्ण वैष्णव बन गए। प्रचारक का यही कर्तव्य है। जीसस क्राइस्ट को तो शूली पर चढ़ना पड़ा था, अतः नारद मुनि को दिया गया शाप अधिक आश्चर्यप्रद नहीं था और उन्होंने उसे सह लिया। अब यह पूछा जा सकता है कि नारद मुनि प्रजापति दक्ष के सम्मुख क्यों रुके रहे और उनके सारे दोषारोपों तथा शापों को सहते रहे। क्या यह दक्ष के उद्धार के लिए था? उत्तर है हाँ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्रजापति दक्ष द्वारा अपमानित होने के बाद नारद मुनि को वहां से तुरंत चले जाना चाहिए था, किंतु वे जानबूझकर दक्ष के कटु शब्दों को सुनने के लिए रुके रहे जिससे दक्ष का क्रोध शांत हो जाए। प्रजापति दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने अनेक पुण्य कर्मों के फल संचित कर रखे थे, इसलिए नारद मुनि को आशा थी कि शाप देने के बाद दक्ष तुष्ट होकर तथा क्रोध से मुक्त होकर अपने दुर्व्यवहार के लिए पश्चाताप करेंगे और इस तरह वैष्णव बनने का अवसर प्राप्त करेंगे तथा उनका उद्धार हो सकेगा। जब जगाई तथा मधाई ने नित्यानंद का अपमान किया तो नित्यानंद सहनशील बनकर खड़े रहे, इसीलिए दोनों भाई उनके चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने पश्चाताप किया। फलस्वरूप बाद में वे पूर्ण वैष्णव बन गए। अनुवाद एक बार दोहराइए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, चूंकि नारद मुनि माने हुए साधु पुरुष हैं, अतः जब प्रजापति दक्ष ने उन्हें शाप दिया तो उन्होंने उत्तर दिया, तत् बाडम, ठीक, तुमने जो भी कहा उत्तम है, मैं इस शाप को स्वीकार करता हूं। वे चाहते
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभेस्तं स्थापितमेन भूतले वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलान् श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपां सगजतम् आगनारघुनाथम् सद्वेतां समधूतं विष्णुसहितं श्रीराधा कृष्णपदा सागनारघुनाथम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु जगतपते, कंचन गौरांगी वंचा कल्पा तरभ्यश्च कृपा सिंधु भयम् च पीतानां पवनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीमशदि गो। हरे कृष्ण 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 ओके ओके शिशु का उवाचा पदीकरणा तद्पदम नान साधु सम्मता देव साधु आदो ही देखते हैं। तो इस श्लोक का उच्चारण सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक का उच्चारण करें सुखदेव गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि जब दक्षा ने नारद मुनि को श्राप दिया नारद मुनि ने हरे कृष्ण नारद मुनि ने स्वीकार कर लिया। दक्षा चाहते तो वापस श्राप दे सकते थे। वैदिक समाज में हमारा सिद्धांत है नेले पे देला टूथ टूथ फॉर टूथ। आप श्राप दे रहे हमें हम तुम्हें श्राप देंगे। पर यहाँ आप देखते हो नारद मुनि ने सह लिया। चाहते तो बदले में श्राप दे सकते थे। और तल अनुवाद में कहा गया है क्यों? क्योंकि वह अत्यंत सहनशील है और दयालु है। तो इस अध्याय में आप भक्त दक्षा की कथा पढ़ रहे हो। अध्याय का नाम है दक्षा का श्राप नारद मुनि। दक्षा की इच्छा थी कि संतान की आबादी बढ़ाया जाए और दक्षा की पत्नी का नाम था पंचजनी। दक्षा ने 10,000 बेटे पैदा किए और उनका नाम था हरियश्वर। बौद्धिक समाज में तो आप सुनते हो ट्विन्स या तीन बच्चे या चार बच्चे एक साथ। दक्षा ने की पत्नी ने 10,000 बेटों को जन्म दिया। और दक्षा की इच्छा थी कि ये बेटे भी आगे जाकर संतान को बढ़ाए। पर दक्षा को ये पता था कि अगर इन्होंने गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश करना है तो पहले इनका आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। जैसे भगवतम के 5वें स्कंद में लिखा है ऋषि जी कहते हैं व्यक्ति को माता नहीं बनना चाहिए पिता नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपनी औलाद को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे। गुरु नहीं बनना चाहिए तब तक वो गुरु के रूप में असली शिक्षा दे। तो दक्षा अपनी जिम्मेदारी का को निभा रहा था। दक्षा चाहते थे कि पहले मेरे बेटों को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो। पहले उन्हें तपस्या करनी चाहिए साधु संगत प्राप्त करना चाहिए और जब अच्छे रूप से तैयारी हो जाएगी फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते। दक्षा ने अपने बेटों को नारायण सरस में भेजा। ये एक बड़ा पवित्र स्थान था जहाँ के संत और ऋषि मुनि आते थे भगवान की चिंतन करने के लिए। नारायण सरस में अनेक संत महात्मा उपस्थित थे और वो सब तपस्या कर रहे थे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और गहरी तपस्या का पालन। दक्षा का भाव ये था कि वहाँ जाएंगे संतों की संगत प्राप्त करेंगे और समझ पाएंगे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहा गया है साधु संग सर्वसाधु नाम मात्र साधु संग सर्वसंग। आप लगभग रोज ये पढ़ सुनते हो क्योंकि लगभग हर तात्पर्य में किसी किसी रूप से ये भाव ये संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है। तो दक्ष के बेटे वहां पहुंचे, संतों की संगत उन्हें प्राप्त हुई और स्वयं तपस्या करना शुरू कर दिया। बहुत कम खाते थे, जैसे ध्रुव महाराज जब गए तपस्या करने तो पहले महीने उन्होंने क्या खाया, फल तो जानवर खाते। तो व्याख्या के बेटों ने भी बड़ी गरीब तपस्या का पालन किया। नारद मुनि का क्या कार्य रहता है, ऐसे तो नारद मुनि को शक्ति वैश अवतार माना जाता है। नारद मुनि का एक ही उद्देश्य रहता है कि नारायण का ज्ञान दे, और नारद मुनि यात्रा करते रहते हैं ढूंढने के लिए किसकी भक्ति में रुचि है या हम किसे भक्त बना सकते हैं। वो नारद मुनि बिना बुलाए हर स्थान में पहुंच जाते हैं। बौद्धिक समाज में तो हमारा सिद्धांत रहता है आप बुलाओगे तो ही हम आपके घर आएंगे, पर नारद मुनि और साधु निमंत्रण की राह नहीं देखता, खुद ही पहुंच जाता है। जैसे एक समय एक राजा थे महाराज प्रचंड भारे, जिनके बेटे गए थे तपस्या का पालन करने के लिए, तो नारद मुनि ने देखा सुना ये राजा इस बुढ़ी आयु में भी ये योजना बना रहा है कि भौतिक सुख कैसे प्राप्त किया जाए, खुद ही उनके महल में पहुंच गए बिना बुलाए, उनसे चर्चा करने लगे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। आप सब भक्ति प्रचार में जाते हो बिना बुलाए पहुंचते हो या निमंत्रण, आप भी बिना बुलाए पहुंच जाते हो, है ना। तो नारद मुनि भी बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, पर नारद मुनि हमेशा ठीक स्थान में पर ठीक समय पहुंच जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज का अपमान हुआ था, माँ ने कहा कि मैं तो सहयोग नहीं दे सकती, कौन दे सकता है भगवान। तो ध्रुव महल छोड़कर मधुवन वन में जाने वाले थे, जब वहाँ कौन पहुँच गए, नारद मुनि। नारद मुनि ने कहा तुम छोटी आयु में अपनी माँ के अपने सौतेली माँ के शब्दों को इतनी गंभीरता से नहीं लो। तो जब नारद मुनि ने देखा कि बड़ा दिल भाव है भगवान के शरणागत होने के लिए, तो उन्होंने उपाय दिया। तो नारद मुनि नारायण सरस में पहुंचे, उन्होंने देखा दक्ष के पुत्र बड़े गंभीर हैं, उनके चेहरे से ही देख रहा था कि बड़े तपस्वी है और बड़े सुंदर रूप से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। और नारद मुनि पहचान गए कि इनमें शुद्ध भक्ति के लक्षण है। तो लक्षण नारद मुनि ने सोचा ये इतने अच्छे हैं क्यों इन्हें फंसाया जाए। दक्षण ने नारद मुनि ने उन्हें कहा तुम्हारे भाव तो बड़े अच्छे हैं, और नारद मुनि की संगत पाने पर दक्षा के बेटों ने निर्णय कर लिया हमने अब ब्रह्मचारी रहना है। हम कहे ऐसा हम पिता के, वैसे तो पिता के आदेश का पालन करते थे, उन्होंने कहा इस विषय पर हम नहीं करेंगे, बाकी सब विषयों पर करेंगे पर इस विषय पर नहीं। उन्होंने निर्णय कर लिया कि हमने ब्रह्मचारी रहना है। जब दक्षा और नारद मुनि ने खुद ही जाकर दक्षा को सूचना दी तुम्हारे बेटों ने निर्णय कर लिया है वो गृहस्थ आश्रम में नहीं जोड़ना चाहते, नंद में खुद ही पहुंच गए। और जब दक्षा को ये सूचना मिली तो बड़े क्रोधित हुए। वो समझ गए थे किसकी शरारत है, पर उन्होंने ज्यादा बोला नहीं, दुखी थे। वहां ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा शो की क्या आवश्यकता, तुम और बच्चे पैदा कर। दक्षा जिनके पास एक खास कला थी, उन्होंने फिर से 1000 बेटों को पैदा कर, उनके पति ने 1000 बेटों को जन्म दिया। और दक्षा की क्या इच्छा थी, दक्षा की इच्छा थी ये भी गृहस्थ आश्रम में जुड़े, संतान को बढ़ाएं। पर दक्षा को ये पता था कि अगर इन्होंने गृहस्थ आश्रम में भी सफलता और सुख चाहिए तो आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। तो दक्षा ने फिर से 1000 बेटों को भेजा नारायण सरस में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो ये बेटे भी आ गए और ये 1000 भाई एक रूप से अपने बड़े भाइयों के समान थे, बिल्कुल तपस्या भाव, और उनके मन में भी भगवत प्राप्ति का भाव था। तो दक्षा के बेटे गए नारायण सरस में, संतों की संगत में रहे, बहुत गहरी तपस्या का पालन करने लगे। कुछ खाते भी नहीं थे और मंत्रों का उच्चारण करते थे और संतों की संगत में रहे थे, क्योंकि नारायण सरस में केवल संत ही पहुँचते थे। तो नारद मुनि वहाँ पहुँचे और नारद मुनि ने देखा ये छोटे भाई अपने बड़े भाई जैसे हैं, बड़े गंभीर, इनका चेहरा भी उनसे मिलता है, इनके लक्षण भी मिलते हैं। तो जब नारद मुनि ने देखा ये छोटे भाई बड़े भाई जैसे हैं तो उन्होंने उनको प्रचार किया। भक्त जो है जब देखता है कि किसी में थोड़ी भी रुचि हो तो रुक जाता है प्रचार के लिए, है कि नहीं। दक्षा ने कहा कि आप तो अपने बड़े भाइयों जैसे हो, बिल्कुल गंभीर हो और आप में वही लक्षण है कि आपके बड़े भाई में भाइयों में थी। इन भाइयों ने भी निर्णय कर लिया हमने अब घर नहीं लौटना, हमने क्या करना है, हमने भी बड़े भाइयों जैसे तपस्या का जीवन बिताना है, हमें यहीं रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। तो जब दक्षा को सूचना मिली, दक्षा समझ पाए लक्षणों के द्वारा कि लगता है कोई बुरी खबर आने वाली है, और दक्षा की बुरी खबर क्या थी, उन्होंने भी निर्णय कर लिया हमने घर नहीं आना। तो दक्षा बड़े क्रोधित हुए, वो समझ पाए कि ये है किसकी शरारत। नारद मुनि, दक्षा ने कहा ये नारद मुनि अपने आप को बड़ा संत मानता है, असली संत मैं हूं। और नारद मुनि संत नहीं है, वो तो बदमाश है, केवल दूसरों को भड़काता है। वो दक्षा ने क्रोधित होकर नारद मुनि को श्राप दिया। क्या श्राप? तुम किसी एक स्थान में नहीं टिक पाओगे, तुम्हें लगातार निरंतर यात्रा करनी पड़ेगी। तो भौतिकवादी के लिए ये गहरा श्राप है, पर भक्तों के लिए तो ये बड़ा अच्छा श्राप है। तो नारद मुनि ने कहा शुक्रिया। तो प्रभुपाद जी लीला के तात्पर्य में कहते हैं जैसे दक्षा ने नारद मुनि को श्राप दिया, मुझे भी मेरे शिष्यों के माँ बाप ने श्राप दिया हुआ, तो मुझे भी लगातार घूमते रहना पड़ता है, किसी एक स्थान में टेक नहीं पाता। तो चैतन्य चैतन्य में आप पढ़ते हो, ये चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया शिवा संगन में, तो उस शिवा संगन में केवल जो उनके प्रसिद्ध भक्त थे उन्हें ही अंदर आने का अधिकार था, क्योंकि महाप्रभु अपनी दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे और महाप्रभु की इच्छा थी केवल जो उनके निकट के भक्त हैं वो ही अंदर आ सके। तो एक ब्राह्मण था जिसकी बहुत इच्छा थी महाप्रभु की दिव्य लीला को का दर्शन प्राप्त करने के लिए, तो महाप्रभु के भक्तों ने रोक दिया। फिर जब महाप्रभु जा रहे थे गंगा में स्नान करने के लिए, वो ब्राह्मण मिला, ब्राह्मण ने अपने जीरों को निकाल कर अंगूठे में लपेट कर कहा, कल मैंने प्रयास किया था तुम्हारे कीर्तन मंडली का दर्शन लेने के लिए, तुम्हारे भक्तों ने मुझे अंदर आने से रोक दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें कभी भी भौतिक सुख नहीं मिलेगा। मुझे महाप्रभु को यह कहा भौतिक सुख नहीं मिलेगा, तो महाप्रभु ने क्या कहा, शुक्रिया, तो अगर आपको कोई ऐसा श्राप दे तो अच्छा है। तो आज के श्लोक में ये कहा जा रहा है कि अगर नारद मुनि चाहते तो बदले में श्राप दे सकते थे, है कि नहीं? नारद मुनि के पास भी शक्ति तो है, नारद मुनि माने हुए भक्त हैं, वो चाहते तो वो भी दक्षा को श्राप दे सकते थे, पर उन्होंने श्राप को सह लिया, उन्होंने बदले में श्राप नहीं दी। क्यों? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं दो कारण, एक था क्या, सहनशील है और दयालु, और दयालु जो भक्त जो है वो श्राप को सह लेता है। उदाहरण के लिए परीक्षित महाराज को श्राप दिया था श्रृंगी ने, क्यों? परीक्षित महाराज राजा थे, राज ऋषि थे और समाज की सुरक्षा कर रहे थे, तो परीक्षित महाराज जंगल में थे, प्यासे थे, पानी की खोज में एक कुटिया में पहुंचे, दूर से उन्होंने देखा था रोशनी, फिर जब कुटिया में पहुंचे तो वहाँ समयकर ऋषि नाम के संत भगवान का चिंतन कर रहे थे, उन्होंने राजा की तरफ देखा भी नहीं, राजा ने अपमान महसूस किया, गुस्से में चले, आगे उन्होंने एक मरे हुए सांप को देखा तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे चढ़ा दिया, और श्रृंगी ने जब देखा कि राजा ने क्या किया है, श्रृंगी ने क्या क्या किया, राजा को श्राप दिया, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये कोई छोटा श्राप तो नहीं है। यहाँ आप देखते हो कि दक्षा ने नारद मुनि को श्राप दिया, उन्होंने केवल ये श्राप दिया तुम किसी एक साल में टिकोगे नहीं, इतने का तुम मर जाओगे। वो श्रृंगी ने तो परीक्षित महाराज को कहा साधन के बजाय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये तो बड़ा भारी श्राप है। पर वहां बच्चे आए हैं, पर परीक्षित महाराज ने स्वीकार कर लिया। अगर परीक्षित महाराज चाहते तो अपनी फौज को भेज सकते थे, श्रृंगी को गिरफ्तार कर सकते थे, तुम मुझे इतना गहरा श्राप दे रहे। पर परीक्षित महाराज ने सह लिया। तो जो भक्त है बड़ा सहनशील होता है। आप हमारे शास्त्र में अनेक उदाहरण पढ़ते हो, भक्त जो है अत्यंत सहनशील होता है। एक राजा थे महाराज रंती देवा, उन्होंने तपस्या की थी, कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं 48 लगभग 50 दिनों के लिए कुछ नहीं खाया। देवताओं की इच्छा थी इस राजा की महिमा को और बढ़ाया जाए। तो एक ब्राह्मण आ गए, ब्राह्मण ने कहा हे राजा हम भूखे हैं कुछ खाने के लिए दीजिए। तो राजा ने लगभग 50 दिनों के लिए व्रत रखा था, क्योंकि ब्राह्मण ने कहा कि हम भूखे हैं। राजा ने उसका थोड़ा हिस्सा दे दिया। फिर राजा खाने वाले थे अपनी पत्नी के साथ, जब एक और भूखा व्यक्ति आ गया, और फिर एक चंडाला आ गया कुत्तों के साथ, कहने लगा हम भूखे हैं कोई खाने के लिए दीजिए। राजा ने जो थोड़ा सा प्रसाद बचा था वो भी दे दिया। फिर बचा पानी, और राजा पानी पीने वाले थे तो एक प्यासा व्यक्ति आ गया, राजा तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि आप हमारी आवश्यकताओं को पूरा करो, हमें पानी चाहिए। राजा ने ये नहीं कहा अरे भाई मैंने सब खाना तो बांट दिया पानी तो पीने दो, कोई और तो यही कह रहा सब खा दिया है खाना का बांट दिया अभी पानी तो पीने दो। राजा ने पानी भी दे दिया, और फिर इन्होंने एक स्तुति की रचना की जिसमें उन्होंने कहा दूसरे सुखी बन जाए जो उनके पापों का परिणाम है वो मुझे भुगतने दो। तो देवता इतने प्रसन्न थे राजा के व्यवहार के साथ कि देवताओं ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा हमने ये घटना की थी तुम्हारी महिमा बढ़ाने के लिए। देवताओं ने रंधी देव की महिमा बढ़ाने के लिए उनकी परीक्षा ली। तो भक्त की भक्त जब सहनशील होता है तो उसके द्वारा उनकी महिमा भी बढ़ती है। जो इसलिए कहा जाता है भक्त को अत्यंत सहनशील होना चाहिए। हरिदास ठाकुर जैसे आप जानते हो 3 लाख बार दिन में जाप करते थे। कल आप भक्तों ने भक्ति सिद्धांत जी का तिरुभक्ति मनाई थी तो भक्ति सिद्धांत जी भी अपने प्रचार को शुरू करने से पहले 3 लाख बार जाप करते थे रोज 10 सालों के लिए प्रचार की शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर 3 लाख बार जाप करते थे। मुसलमान खानदान में जन्म हुआ था उसका अलग कारण है। तो काजी के कहने पर राजा ने हरिदास ठाकुर को निमंत्रण दिया तुम्हारा जन्म इतने ऊंचे खानदान में हुआ है मुसलमान। हम लोग तो कोई चावल को हिंदू हाथ लगा दे उसको भी नहीं छूते, तुम तो उनके नामों का भगवान के नाम का छाप कर जाओ। भाईदास ने समझाया कि भगवान के नाम और वो अभिन्न है, और हरिदास ने स्वीकार नहीं किया कि हरि नाम का उच्चारण छोड़ देना चाहिए। तो राजा ने कहा ले जाओ इसे बाजारों में पीटने के लिए। उन दिनों में सजा का एक साधन था कि बाजार में घसीट कर ले जाते थे और पीटते थे। क्या देखो, तो हरिदास को एक बाजार से दूसरे बाजार ले जा रहे थे और पीटते जा रहे थे, पर हरिदास के शरीर में कोई निशाना नहीं था। तो जब 22वें बाजार तक पहुंचे, अक्सर दूसरे या तीसरे बाजार में पहुंचने तक व्यक्ति का ध्यान तो जाता था, पर हरिदास को पीटा जा रहा था बड़े क्रोध के साथ। जब भी 22 बाजार तक पहुंच गए, वो हरिदास के शरीर में कोई निशाना भी नहीं था, तो वह आश्चर्य हो रहे थे। तो जब 22 बाजार में पहुंचे, 22वें बाजार में हरिदास ने सुना कि दो पीटने वाले कह रहे हैं अब तो काजी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अक्सर व्यक्ति दूसरे बाजार तीसरे बाजार में पहुंचने तक मर जाते हैं, ये 22 बाजार तक हम पहुंच गए उसको कोई निशान ही नहीं हुआ। तो हरिदास ने जब सुना कि मेरे कारण इनको सजा मिलेगी, मेरे कारण इनको फांसी चढ़ जाएगी, हरिदास ने क्या किया? हरिदास ने ये नहीं सोचा बदला लो। हरिदास ने ऐसा व्यवहार किया कि जैसे लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। जब उन्होंने देखा ये सांस भी नहीं ले रहा, नस भी नहीं हिल रही, तो खुशी में नाचने लगे। वो राजा को सूचना पहुंच गई हरिदास की मृत्यु हो गई है, 22वें बाजार में उनकी मृत्यु हो गई। तो राजा ने तो कहा मुस्लिम संस्कारों के अनुसार अंतिम संस्कार कर दो। राजा ने कहा नहीं, उस पापी को हमारे धर्म के संस्कारों के कारण नहीं, उसे तो गंगा में फेंक दो। पर अब देखो हरिदास का भाव, उन्हें लोग पीट रहे थे, हरिदास ने क्या सोचा उनका उद्धार। तो भक्त जो है खास करके वैष्णव सिद्धांत में उसे अत्यंत सहनशील होना चाहिए और दयालु होना चाहिए, ये दो लक्षण आवश्यक है। भक्त की महिमा बढ़ती है इन दो लक्षणों के द्वारा। बहुत एक समाज में हम सोचते हैं हम रोब नहीं दिखाएंगे तो लोग हमारा फायदा उठा लेंगे, पर आप भक्त वैष्णव का आचरण देखो, वो विनम्र रहना चाहते हैं और दयालु रहना चाहते हैं। और इस विषय में अनेक उदाहरण हैं जिसमें भक्त जो थे विनम्र थे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में भक्त जो है विनम्र है दयालु है। वो प्रभुपाद जी भगवतम के तीसरे स्कंद के एक प्रसिद्ध श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। कौन सा है वो श्लोक? हाँ, अब वैसे कितने भक्तों ने इस श्लोक को कंठस्थ किया हुआ है। तो तीसरे स्कंद में कपिला देव माँ के माता ने पूछा ये बताओ कैसे मुझे भौतिक क्लेशों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। इससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि देवहूति अज्ञानता में थी, देवती ये प्रश्न पूछ रही है हमारी भलाई के लिए। अर्जुन भगवान के सनातन साथी है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए अर्जुन भूल गए थे कि जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए। भगवान ने दिया, भगवान ने अर्जुन को इस स्थिति में डाला केवल इसलिए कि गीता का संदेश दिया जाए मानव समाज के लिए। उसी प्रकार परीक्षित महाराज की सुरक्षा भगवान ने की थी जब वो माता के घर में थे, जब उन्होंने अपना विस्तार करके उनकी सुरक्षा की। तो अगर भगवान चाहते तो जब श्राप प्राप्त हुआ सुरक्षा नहीं कर सकते थे बड़े आसानी से, पर भगवान की इच्छा थी कि भगवतम का संदेश दिया जाए मानव समाज के लिए। तो देवहूति ने पूछा ये प्रश्न, भगवान ने कपिल देव ने कहा भक्ति योग एक साधन है, और उन्होंने कहा यही आसक्ति जो हम भौतिकवादियों के प्रति रखते हैं वही आसक्ति हमने रखना चाहिए। किसके प्रति? संतों के प्रति। अगर हम संतों के प्रति आसक्ति रखेंगे तो वो मुक्ति का द्वार बन जाएगा, और भौतिक स्थितियों का आसक्ति रखेंगे तो बंधन। आज आप समाज में क्या देखते हो? साधुओं के प्रति आसक्ति, सबसे पहले आज के वातावरण में असली साधु को ढूंढना बहुत मुश्किल है। सच बात है, अनेक साधु के वस्त्र में लोग देखेंगे पर साधु नहीं, और जो साधु हैं उनसे पूछो कि तपस्या का क्यों नहीं वर्णन करते, कहेंगे तपस्या की चर्चा करेंगे तो कोई आएगा नहीं, ग्राहक नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि संतों के प्रति आसक्ति रखो। आज आप क्या देखते हो? वहीं आसक्ति किसके विषय में? भौतिक वातावरण। और अगर कोई रिश्ता हमें संतुष्ट देने वाला नहीं दिखता तो हम आसक्ति बढ़ा देते हैं कुत्ते बिल्लियों की तरफ। हाँ, आजकल भारत में भी रिवाज बन गया है। पहले तो हम कहते थे अरे ये तो विदेशों की समस्या, सच बात है। अब मैं देखता हूँ वृंदावन में भी एक जगह है वृंदावन में भी लोग कुत्ते बिल्लियों के प्रति, क्या भारत में कुत्तों का फैशन है बिल्लियों का इतना नहीं है, पर अमेरिका में कुत्ते और बिल्लियों का कॉम्पिटिशन है। कभी कुत्तों की आबादी बढ़ जाती है कभी बिल्लियों के, और लोगों की इतनी गहरी रुचि है जब आपका इंश्योरेंस एजेंट आता है आपको इंश्योरेंस देने तो कहता है वी ऑल्सो हैव अ पॉलिसी फॉर कैट्स एंड डॉग, उनका बीमा भी करा सकते हैं। लोग कराते हैं क्यों? क्योंकि जानवरों के डॉक्टर ज़्यादा महंगे हैं दूसरे डॉक्टर के तुलना में। तो कपिलदेव भगवान ने कहा आसक्ति बढ़ाओ संतों के प्रति, और आसक्ति अगर रखोगे भौतिक विषयों में तो और गहराई से फंसते रहो। फिर आगे वो माता ने पूछा साधु के लक्षण क्या है, साधु को मैं कैसे पहचानूं, और उसके उत्तर में क्या कहा एक देख सुना करूँ नहीं कहा। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आपने अनेक समय सुना होगा। तो क्या तितिक्षा? सहनशील, हमें सहनशील होना चाहिए। और ये कठिन है क्योंकि भौतिक समाज में हमें छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है, सच बात है। छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है, अगर कोई हमें किसी प्रकार का कष्ट दे तो हम क्या कहते हैं देख लेंगे हम भी नहीं। पर आध्यात्मिक क्षेत्र में महाप्रभु ने क्या कहा, राध भी सुनी चाहिए ना, रोड भी सुना हमारे ना मन था। एक रूप से मेरे ख्याल से आप लगभग रोज ये सुनते हो क्लास, लगभग रोज सुनते हो गए राध भी सुनी चाहिए ना, और लगभग हर तीसरे चौथे तात्पर्य में भी ये पढ़ते हो, है ना। तो आप पूछना चाहोगे क्या कारण है इतनी बार इसका वर्णन किया जा रहा है, ये पहली बार तो नहीं आप सुन रहे। कारण ये है कि श्लोक का पालन करना एक रूप से सबसे मुश्किल कार्य है। हमें लगता है आसान, हमें लगता है हम तो सुन बैठे हैं कई बार, पर हम इतने ढीठ हैं, बुरा नहीं मानना कि सुन बैठे हैं पर पालन करना कठिन। तो यहाँ कहा जा रहा है जो साधु है सहनशील होता है, और करुणिका, करुणिका का अर्थ क्या है, क्या है तो इस विषय में प्रभा जी तात्पर्य में हमें बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। एक तो प्रभा जी कह रहे हैं यहाँ, प्रभा जी कह रहे हैं जो प्रचार करता है उसके लिए जीवन जो है इतना आसान नहीं है। मैं पढ़ूँ एग्जैक्ट शब्द, प्रीचर श्री मोहम्मदन ग्रास मोटम टॉलरेंट्री बिकम अ प्रीचर कैन नॉट लिव एन ईजी गोइंग लाइफ। अगर प्रचार कर रहे हो, प्रचारक बनना चाहते हो, तो इतना एहसान का जीवन नहीं बिता सकते। प्रभु जी स्पष्ट कह रहे हैं, आपने पढ़ा कि जो प्रचारक है उसे ये नहीं सोचना चाहिए हम तो आराम का जिंदगी बिताएंगे, आराम की जिंदगी बिताने का भी भाव रखोगे तो उतनी मात्रा में ही सुरक्षा भी प्राप्त होगी। और प्रभु जी उदाहरण देते हैं किसका, जगाए मलाई भगवान नित्यानंद कैसे प्रचार करने जा रहे थे, और क्या है सरल था, उनको भी कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा, उनको भी पत्थर मारा किसने, फेंका मलाई ने। तो जो भगवान का भक्त है, भगवान की सेवा में जुड़ा है, दया की भावना है, उसे ये भी सोच लेना चाहिए कि इतना आसान जीवन नहीं है, हमें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। और जो भक्त है कठिनाई के सामने से डरता नहीं है, क्यों, वो सोचता है ये भगवान की कृपा है कि हमें कठिन स्थिति में डाला है, क्योंकि जितनी कठिनाई का सामना करोगे उतना अधिक गहराई से भगवान के शरणागत होने होते हैं। महारानी कुंती ने क्या कहा, विपादु संतु तह शाश्वत, हे भगवान आप मेरे कष्टों को बढ़ाओ। कोई ऐसे प्रार्थना करता है, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कष्टों को दूर करो, क्यों, क्योंकि आप जब बढ़ाते हो मुझे आपके चरण कमलों का स्मरण करना पड़ता है, और जितना अधिक आपके चरण कमलों का स्मरण होगा उतनी तेजी से ही आपकी कृपा प्राप्त होगी। जैसे आप जब प्रचार में जाते हो आपको बड़े गहराई के साथ भगवान का चिंतन करना पड़ता है, भगवान की कृपा की भीख मांगनी पड़ती है, हमें माध्यम बनाओ इसका उद्धार करने के। तो भक्त जो है कठिन स्थिति का भी सामना करने को तैयार रहता है, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रचार में जुड़े हैं तो बड़ा एहसान रहेगा। हम निकलेंगे मंदिर से, लोग लाइन में खड़े रहेंगे, हमें गीता दो, हमें गीता दो, हमने पहले ऑर्डर दिया था। दूसरा हाँ, इतना एहसान नहीं होगा। हम जब प्रचार करने जाते हैं, कहीं तो प्रचार करने जाते ही नहीं, कोई बहाना ढूंढ देते हैं। तो जो बहाना ढूंढ लेते हैं वो बुरा नहीं माना, एक रूप से दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं जो मैं प्रचार करे वो मैं प्रिय भक्त बन जाता। खैर, मन और प्रचार में जाते हो तो कठिनाई का सामना तो करना पड़ता है। अब प्रभुपाद जी के उदाहरण पर देखो, प्रभुपाद जी को लगभग 40 साल संघर्ष करना पड़ा, तो वो तैयार थे, कभी हिम्मत नहीं हारे। तो भगवान के जो भक्त हैं, भगवान की प्रशंसा के लिए कठिनाई का सामना भी करते हैं, भगवान की प्रशंसा के लिए। जैसे आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आसन कर रहे हो, ध्यान से देखा जाए इन ग्रंथों में क्या है, किसका संदेश, श्री भगवान वाचा, परम भगवान बोल रहे हैं। और 18वें अध्याय में कौन सा वो प्रसिद्ध श्लोक है, याइदं परमं, भगवान क्या कह रहे हैं, सब भक्तों में वो प्रिय है जो प्रचार करता है, उसी ज्यादा प्रिय न हुआ है ना होगा। तो ये है शास्त्र का वर्णन। तो जो भक्त है कठिन स्थिति का सामना करता है, क्यों, केवल क्योंकि भगवान की इच्छा है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, झाड़े दाखो ताए कहो, तो ये तो भगवान की इच्छा है। तो तितिक्षा करने का सूरदास सर्वधैनम, इसका क्या है, भक्त जो है सबका मित्र बनता है। बौद्धिक समाज में हम सबके मित्र हैं, बौद्धिक समाज में एक दल, दूसरा दल, तीसरा दल, चौथा दल, राजनीतिक पार्टीज हैं, इतने दल हैं, कोई हमारा शत्रु है कोई मित्र है, सच बात है। पर भक्त के लिए सभी मेरे मित्र हैं। प्रहलाद महाराज के पिता शिक्षा दे रहे थे, प्रहलाद के दो अध्यापक थे, संदा और अमरका, इनको ये ज्ञान दो किस प्रकार समाज का बंटवारा मित्र और शत्रु में होना चाहिए। जब उन्होंने ये शिक्षा देना आरंभ किया, प्रहलाद ने कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि सभी मेरे मित्र हैं, कोई शत्रु नहीं। ये होना चाहिए हमारा भाव, सभी हमारे मित्र हैं। तो आप कहोगे अगर दूसरे व्यक्ति हमें मित्र नहीं माने तो हमें क्या करना है, आप अपनी तरफ से सबको मित्र मानो, दूसरे व्यक्ति माने या नहीं माने, माने अब अपनी तरफ से ठीक कार्य करो। अजित सत्व संता, उसका किसके प्रति द्वेष भाव नहीं रहता। और अगर ये भाव रखोगे फिर आप शांत रहोगे। आज हम सब अशांत हैं, सच बात है, अशांत है, क्यों, हम छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं तीन मार्ग हैं जिनके द्वारा तुम नरक में जाते हो, क्या, कौन से हैं, काम, क्रोध, लोभ। क्रोध, हम सबको क्रोध आते रहता है, क्यों, क्योंकि हमारा इतना गहरा संबंध है हमारे शरीर के साथ, हम सोते हम ही हैं ये शरीर। तो भगवान कहते हैं सहनशील बन जाओ। तो जब मदाई ने नित्यानंद के माथे पर पत्थर फेंका और नित्यानंद ने कुछ नहीं बोला, महाप्रभु क्रोधित हो गए थे, महाप्रभु सुदर्शन चक्र लेकर पहुंच गए, पर नित्यानंद ने रोक दिया। और जब जगाई मधाई ने देखा कि हमने इतना अपमान किया, इनको चोट दी, जब भी ये व्यक्ति कुछ नहीं कह रहे तो उनका भाव सहनशीलता देखकर उनके हृदय में क्या हुआ, पछतावा हुआ। तो इसी प्रकार प्रभा जी तात्पर्य में कह रहे हैं, दक्षा का क्रोध इतना गहरा था कि नारद मुनि चाहते तो वापस श्राप भी दे सकते थे, पर नारद मुनि वहाँ टिक गए। इसके लिए दक्षा का क्रोध समाप्त होने के बाद पछतावा आकर उन्हें भी पुण्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमें अत्यंत सहनशील होना चाहिए और दयालु होना चाहिए। तो इस समय हम सब संघर्ष कर रहे हैं। एक संघर्ष है इंद्रियों के साथ, सच बात है, ये सबसे बड़ा संघर्ष है। भगवान ने तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा, क्या कारण है कि जानते हुए भी हम गलत कार्य करते हैं। भगवान ने क्या कहा, काम ऐसा क्रोध से, भगवान ने कहा काम के कारण क्रोध आता है। हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ते जाती हैं, हम प्रयास करते हैं उन्हें संतुष्ट करने के लिए, पर संतुष्ट कर पाते हो नहीं कर पाते, और फिर हम क्रोधित हो जाते हैं। तो असली विजय है मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम, ये है असली विजय भक्त के लिए। तो ये सारे गुण प्राप्त हो सकते हैं किस माध्यम से, भक्ति के हरि नाम के उच्चारण से। क्रोध हमारा शत्रु है, काम हमारा शत्रु है, क्रोध शत्रु है, लोभ लोभ भी शत्रु है, मोह मन मत्सर, ये सारे हमारे शत्रु हैं। और हम सबका प्रयास रहना चाहिए इन शत्रुओं का वध करना। और कैसे, ये माँ क्या है साधन है नाम को उच्चारण। इस प्रकार अगर एक बिल्डिंग में फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो बिल्डिंग मजबूत बनती है, अगर फाउंडेशन में आपने गलती कर दी तो बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर सकती है। तो इसी प्रकार हमारा आध्यात्मिक फाउंडेशन बनता है किसके द्वारा, शरणम कीर्तनम के द्वारा। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सिद्धांत भी सुन चेना के भाव से करोगे तो हरि का नाम का उच्चारण सदा कर सकोगे। तो हमें इन क्रोधों को वश में लाए, ये काम क्रोध लोभ और मद मत्सर्य, इन शत्रुओं को हमने नष्ट करना है जो कि संभव है हरि नाम के द्वारा। तो आज के श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है। और हम तात्पर्य श्लोक में भी लिखा है, नारद मुनि क्या थे, सहनशील थे और दयालु थे। और जो वैष्णव बनना चाहते हैं उन्हें भी प्रयास करना चाहिए इन गुणों को अनुकूल करने के लिए। और प्रयास करने पर हर कार्य संभव हो सकता है। और जो प्रचार कर रहे हैं उन्हें हर प्रकार की स्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। नारद मुनि को तो दक्षा ने गाली भी दी, युवराज को तुम बदमाश तुम बदमाश हो, सोते सोते संत महात्मा वो बदमाश। तो पर नारद मुनि ने सह लिया, नारद मुनि ने ये तो नहीं कहा तुम मुझे बदमाश कह दे हो तुम भी बदमाश हो, वो नहीं कहा ना। नारद मुनि ने सह लिया। दक्ष ने कहा तुम बदमाश हो, धोखा दे रहे हो दूसरों को। नारद मुनि ने सह लिया। तो भक्त को सहनशील होना चाहिए। और आध्यात्मिक वातावरण में कई कभी 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 आप देखते हुए भक्त में अनबन हो जाती है और प्रयास करता है कि ये अनबन को दूर किया जाए। पर अगर गहराई से अब कारण देखो अनबन का क्या है, तो आप देखो कारण क्या है, अहंकार, आदर, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, इनके कारण। हम चाहते हैं हमें ज्यादा प्राप्त हो, वो व्यक्ति के भी प्रयास करे उसे प्राप्त करने के लिए। तो इन नशों से हमें बचना है। और माध्यम क्या है, नाम का उच्चारण, साधु संगत में रहना, शास्त्रों का अध्ययन और दृढ़ होकर प्रयास करना कि इन कमियों को हम नष्ट कर सकें। वो प्रभुपाद जी कहते थे तुम एक कदम उठाओ भगवान की तरफ, भगवान कितने कदम उठाएंगे, 10 कदम उठाएंगे। और गीता में भगवान क्या कहते हैं, जो जो प्रयास करते हैं मेरी सेवा में जुड़ने के लिए उनमें कुछ कमी भी हो तो मैं क्या करता हूँ, दूर होता हूँ। और अगर आपको प्रचार के दौरान कठिनाई का सामना करना पड़े तो घबराने की जरूरत नहीं, भगवान नित्यानंद का उदाहरण है। और प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं आज के तात्पर्य में कि जो प्रचारक को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका प्रचार बड़ा आराम से होगा, उनको कठिनाइयों के लिए तैयार रहना चाहिए। और हम इसे तैयार रहते हैं क्योंकि ये कठिनाई अगर अनुभव करना भी है, किसके लिए अनुभव कर रहे हो, भगवान के लिए। हम कहते हैं गुरु की प्रशंसा के लिए। गुरु की प्रशंसा का अर्थ क्या है, गुरु आपको क्या आदेश देता है, जो भगवान ने दिया। भगवान ने कहा ना गीता में सब भक्त में सबसे प्रिय ही है। तो गुरु क्या कहता है, ग्रंथों को बांटो और लोग ग्रंथों को पढ़ेंगे जीवन को सुधारेंगे। कभी कभी हमारे मन में यह बैम रहता है, नहीं नहीं कोई नहीं पढ़ रहा। पर आप आश्चर्य हो गए ये देखकर कितने लोग पढ़ रहे हैं और कितने लोग जीवन को सुधार रहे हैं ग्रंथों के माध्यम से। अगर आज आप देख रहे हो भक्तों की संख्या बढ़ रही है तो इसका कारण क्या है, इन ग्रंथों का प्रभाव। कल रात को मैं ईस्ट दिल्ली प्रोग्राम में था और वहाँ उसी इलाके में 2000 भक्त हैं। तो अगर आप पूरे दिल्ली में अगर गिनो तो मेरे ख्याल से कम 30-40 हजार भक्त होंगे। तो ये भक्त कैसे बने, इन ग्रंथों के माध्यम से। दो आवश्यक कारण है, एक है भक्त साधु और दूसरा है ग्रंथ साधु। भक्त साधु द्वारा हमें भक्ति की महिमा का ज्ञान प्राप्त होता है। भक्तों ने आपको निमंत्रण दिया और पहले जुड़े और आस्ते आस्ते इस मार्ग में आगे बढ़े। या ग्रंथ साधु, किसी ने आपको ग्रंथ दिया, ग्रंथ पढ़ना शुरू किया और आपने निर्णय किया हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो शास्त्रों को रोज पढ़ोगे सुनोगे तो आपको क्या लगेगा, ये है हमारे आदेश, ये है हमारे लिए। जब आप अर्जुन के प्रश्नों को पढ़ते हो सुनते हो तो आपको क्या लगता है, अरे यही प्रश्न मेरे मन में भी था, है कि नहीं। भगवत में जब आप प्रश्नों को सुनते हो यही प्रश्न मेरे मन में थे। देवभूति ने पूछा साधु के क्या लक्षण, आपको ये तो मेरे प्रश्न मेरे मन में भी है, साधु के क्या लक्षण। ये प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर का अगर हम लाभ उठाएं तो आपके जीवन को सफल बना सकेंगे। तो आप सब भागवतम पढ़िए और ग्रंथों को पढ़िए और ग्रंथों को बांटने में सहयोग दीजिए। वो इस प्रकार अति सुख प्राप्त करोगे, वो इस प्रकार आपका मन शांत होगा और ये सारे गुण प्राप्त कर सकोगे किस माध्यम से, है नाम के द्वारा। एक समय चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों से कहा, आज मैंने केवल लखपतियों के घर में खाना खाना, तो उनके भक्त घबरा गए। लखपतियों के घर में महाप्रभु खाएंगे? हम तो लखपति नहीं है, महाप्रभु हमारे घर में आएंगे नहीं। तो भक्त घबरा गए। भक्तों ने कहा महाप्रभु से, आपने निर्णय दिया है लखपतियों के घर में खाओगे, हम तो लखपति नहीं है, हम तो गरीब हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने, लखपति का मतलब है जो लाख बार जाप करता है, उन भक्तों के घर में खाऊंगा। तो आप सब हो असली लखपति, क्योंकि आपने हरि नाम को स्वीकार किया है। तो हरि नाम को स्वीकार कीजिए, हरि नाम की महिमा का प्रचार कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में थे, एक ब्राह्मण कुर्मा ने कहा, मैं घर छोड़कर आपके साथ चलना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा, नहीं, मेरे साथ वहाँ चलो, जाओ वहीं रहो, हरि नाम का उच्चारण करो, हरि नाम की महिमा का प्रचार करो, गीता का अध्ययन करो, गीता की महिमा का प्रचार करो। इस प्रकार तुम सदा मेरे साथ रहोगे। तो ये भक्ति का मार्ग सरल है, कठिन नहीं है। माया का मार्ग ज़्यादा कठिन है और माया का परिणाम ही बड़ा भयंकर है। तो आप सब जुड़े हो इस भक्ति के मार्ग में, इसका पूरा लाभ उठाइए और जीवन को सुखी बनाइए। हरे कृष्णा।
थैंक यू गुरु महाराज, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। महाराज मेरा प्रश्न है, जैसे कि एक भक्ति अंदर जो दो स्वाभाविक गुण जो आपने बताए, सहनशीलता और दया का भाव, तो अभी हमारे अंदर आर्टिफिशियल
है। श्लोक में था।
हाँ जी, तो हम जो है कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि हम बहुत जो है कृपालु हैं और हमारे अंदर बहुत विनम्रता है, जैसे हमें बहुत मुश्किल है विनम्रता का भावना, तो कैसे इसको शीघ्र अतिशीघ्र जो है कोई ऐसा शॉर्टकट है कि हम इसको इस भाव को अनुकूल कर सकें।
हर गुण जिनके विषय में आप पढ़ते हो शास्त्र में अनुकूल हो सकते हैं और उपाय पिपा लीजिए। और माध्यम क्या है? महामंत्र का जाप। महामंत्र का जाप ध्यानपूर्वक करोगे तो इसके द्वारा आध्यात्मिक शक्ति बनती है। आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा के कारण ये गुण भी अनुकूल होते हैं। ये सारे गुण आप सब अनुकूल कर सकते हो अगर आप प्रयास करो। और प्रयास का अर्थ है ध्यानपूर्वक जाप करना, शास्त्र पढ़ना। हमारे कई भक्त हैं आपके दिल्ली शहर में जिनमें प्रचार के लिए बड़ा उत्साह है, जो इस दिन रात प्रचार करते हैं, सारा साल प्रचार करते हैं। आप देखिए भारत में आपके जो क्रिश्चियन भाई बहन हैं पूरा साल घर घर जाते हैं बाइबल के साथ। तो प्रचार का उत्साह प्राप्त हो सकता है अगर आप प्रयास कर रहे हो हृदय को पवित्र बनाने के लिए और शासन को पढ़ो। ये थोड़ी कि लोगों की रुचि नहीं है प्रचार करने में, अगर रुचि नहीं होती तो आप लोग बाहर क्यों जाते हैं? ये बात जरूर है, इतनी आसान सेवा नहीं है। पर प्रभुपाद जी तो तात्पर्य में कह रहे थे, प्रचारक को ये नहीं सोचना चाहिए प्रचार की सेवा बड़े आराम से हो जाएगी, वैसे कठिनाई का सामना की उम्मीद भी करनी चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न?
नमन प्रणाम गुरु महाराज, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर क्लास लिया। तो मेरा प्रश्न ये था,
श्लोक खूबसूरत था वो है,
आपका एक्सप्लेनेशन
वो है व्यास देव, और प्रभु जी का तात्पर्य बड़ा सुंदर था, मैं प्रभु जी का गुरु।
थैंक यू गुरु महाराज। उन्होंने मेरा प्रश्न ये था कि बहुत सारे भक्त लोग भक्ति में आते हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए और यहाँ पर आनंद के लिए, और फिर भक्ति में आने के बाद अगर उनको ये पता चलता है कि और दुख लेने भगवान के लिए
और क्या
और दुख लेने हैं भगवान के लिए और कठिनाई लेनी है, तो घबरा जाते हैं और लगता है कि यहाँ तो भगवान का आश्रय में आनंद ही आनंद है, तो कैसे हम इसका समन्वय करें?
आनंद ही आनंद होना चाहिए। असल में भक्ति के मार्ग में जो कष्ट भी है वो असली गुण है। एक समय भक्त प्रभुपाद जी से कह रहे थे, आप विश्राम कीजिए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, प्लीज डोंट टेक अवे माय प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा। ये जो भगवान के लिए संघर्ष करने की स्थिति है ये तो असली आनंद है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, एक माता छोटे बच्चे को पाल रही है, बच्चा तटी पेशाब सब करता है, माँ की गोद में माँ आनंद उठा रही है। तो भगवान के लिए संघर्ष करना, भगवान के लिए प्रयास करना है, ये तो अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति को ही ये अवसर प्राप्त होता है।
कृष्ण महाराज
पूछे,
पूछ लो महाराज। धन्यवाद आपका, बहुत ही शिक्षाप्रद आपका प्रवचन था महाराज। जब आपने बताया जब प्रचारक बाहर जाता है तो उसको बहुत सी कठिनाइयां सहन करनी पड़ती है, तो बाहर वालों की तो कठिनाइयां हम सहन कर लेते हैं, अगर भक्त को छोटी सी बातें बोल दे वो सहन नहीं होती।
इसलिए हमें इस क्षेत्र में इस गुण को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हर तात्पर्य में, हर दूसरे तीसरे तात्पर्य में ये संदेश आप सुनो, क्योंकि ये दिखते हैं एहसान पर इनको अनुकूल करना एहसान नहीं है। तो यू हैव टू ट्राई। क्या था प्रश्न? हाँ हाँ, तो यू कीप ट्राइंग एंड स्पेशली इफ वी आर हैव अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फाउंडेशन। हमें स्पिरिचुअल फाउंडेशन को मजबूत, फाउंडेशन मजबूत रहेगी तो बिल्डिंग मजबूत रहेगी। हाँ, इसीलिए हमें श्रवण कीर्तन पर ध्यान देना चाहिए, फिर वाचो बेगम भी संभव होगा।
महाराज थैंक यू गुरु महाराज फॉर वंडरफुल क्लास। और मेरा महाराज प्रश्न है कि कई बार हम देखते हैं कि शिष्यों की गलती की वजह से गुरु को बहुत सहन करना पड़ता है, तो शिष्य के क्या कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने गुरु को हमेशा प्रसन्न कर सके?
बहुत सरल, गुरु ये नहीं कहता लाख रुपये महीना चंदा चाहिए। गुरु कहता है जप करो, सोलह माला चाणियों का पालन करो, और सेवा करो, प्रचार करो। गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम के नियमों के अनुसार रहो, धन गृहस्थ को धन कमाना पड़ता है। ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी आश्रम के नियमों के अनुसार रहो बस। और इसके द्वारा आप भगवान के धाम जाओगे। भगवान खुद कहते हैं सेवा धर्म हम पैसा जमा में कृष्ण हो जाओ, मैं सब धर्म को छोड़कर मेरे में आओ तो मेरे धाम में आओगे। पर हमारी क्या समस्या है, भगवान तो कहते हैं मेरे धाम में आओ, पर हम कहते हैं थोड़ी देर और दिल्ली में रहने दो, दिल्ली की हवा बड़ी पवित्र है, ये हवा इस वातावरण। हम सोचते हैं हाँ स्वीकार करेंगे एक दिन, वो एक दिन कभी आता ही नहीं है। कल 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 और कल से पहले कल आ जाता है। इसे शास्त्रों का निर्णय है तुरंत ही स्वीकार करो। ओके
वन मोर क्वेश्चन। आज कई बार हम देखते हैं कि जैसे भक्त शुरुआत में ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही उत्साहित होते हैं और उत्साह से जप करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु कुछ समय के बाद पता लगता है कि हमको मन और इंद्रियों को भी नियंत्रण करना है और इसको भी सहन करना है, तो निरुत्साहित हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनको भक्ति के नियम टूटते हैं, धीरे धीरे नीचे गिरते हैं, कई बार देखते हैं कि वो भक्ति से च्युत भी हो जाते हैं, तो कैसे?
कई बार ऐसे भक्तों को देखते हो गए तो कई बार उनको भी देखते हो गए जो बड़े कड़क हैं, तो उनकी नकल करो जो कड़क है, उनकी नकल मत करो जो खुद कमजोर है। आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपकी इच्छा रहती है कि वो आईसीयू में जो आदमी है वैसे आप भी बन जाओ। आपकी इच्छा रहती है नहीं वो जो ओलंपिक्स में भाग रहा है वैसे में ऐसा मैं स्वास्थ्य होना चाहिए, है ना? आप ये नहीं कहते वो आईसीयू वाले की जैसे अच्छे भक्तों की नकल करो। यस यस
धन्यवाद महाराज। महाराज जिस प्रकार से तात्पर्य में भी है और आपने भी कक्षा में बताया, क्लास में बताया कि निरंतर हरि नाम का जप कर वही कर सकता है जिसके अंदर कुछ गुण हो, जैसे त्रिनादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना, और साथ ही साथ हरि नाम ही माध्यम है कि उन गुणों को प्राप्त किया जा सकता है, तो इस चीज़ को कैसे समझें? अभी हमारी अवस्था में या मेरी अवस्था में जब करते हैं परंतु जब डिस्टर्बेंस आती है तो हर नाम ध्यान पूर्वक नहीं कर पाते, तो किस प्रकार से इस चीज को समझें?
हम सरलता से विचलित हो जाते हैं, तो इसलिए कहा गया है शुद्ध भक्तों की संगत रखो, उनसे प्रश्न पूछो। उपदेश अमृत में रूपक गोस्वामी कहते हैं छह प्रकार के संबंध होने चाहिए भक्तों के बीच में। एक है अपने मन के विचारों को प्रस्तुत करना, दूसरा है पूछना कैसे इन समस्याओं का हल हो सकता है, तो भक्तों के संग में रहो। और अगर कुछ कठिनाई है, कोई कन्फ्यूजन आ रहा है, कोई विचलित होने के भाव आ रहे हैं, तो पूछो भक्तों से कि ये समस्या आ रही है, इसको हल कैसे किया जाए। आपके शरीर में कुछ दर्द होती है तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास भाग जाते हो। उसी प्रकार हमारे मन में जैसे माया के भाव आए हमें तुरंत ही काउंसलर या भक्त का सहयोग लेना चाहिए।
Is that your question? एक प्रश्न और है महाराज, जिस प्रकार से कभी प्रचार के लिए जाते हैं या ग्रंथ के वितरण के लिए जाते हैं किसी किन्हीं भौतिकवादी व्यक्तियों के पास में या बाहर के लोगों के पास में, तो ये भाव किस प्रकार से अंदर रहे कि हम उनके लाभ के लिए जा रहे हैं? ज़्यादातर होता है कि हम अपना भगवद गीता का स्कोर के लिए जा रहे हैं या फिर अपनी सेवा करने के लिए जा रहे हैं, ये भी साथ में कैसे भाव रहे कि उनका भी लाभ हो इससे, और किस प्रकार से उनको आगे फॉलोअप करना चाहिए ताकि उनका वास्तव में लाभ हो?
जाते हो अब एक साथ दो काम कर रहे हो, एक तरफ से आप भगवान को दिखा रहे हो, आप उनके आदेश का कदर रखते हो कि भगवान ही आपको कह रहे हैं ना जाओ प्रचार करने, एक तरफ से आप ये बता रहे हो कृष्णा वी आर फॉलोइंग योर ऑर्डर वी आर ट्राइंग टू फॉलो, दूसरी तरफ से आप दूसरे का उद्धार करने का प्रयास कर रहे हो, आप चाहते हो कि पूरा समाज सुखी बने। अब ये भी जानते हो असली सुख का मतलब है भगवान के शरणागत होना, आप प्रयास करें उन्हें भी जोड़ने के लिए। अगर आप सब जो यहाँ बैठे हो, अगर आप पूछ ध्यान से देखो आप कैसे जुड़े, तो आप कहोगे किसी ने हमें ग्रंथ दिया था या किसी ने आपको निमंत्रण दिया है कि नहीं, या आप ये नहीं कि आपके मन में आपको सपना आ गया चलो पंजाबी वांग बंदा। तो भगवान जब अधो श्रद्धा तथा साधु, भगवान जब देखते हैं कि हमारे में ये श्रद्धा है तो किसी न किसी रूप से आपको साधु की संगत पहुंचा देते हैं। Yes. No question from ladies. आप पूछे। पूछे जल्दी जल्दी।
हरे कृष्णा महाराज। महाराज जैसा कि हम देखते हैं कि आप हर क्लास में बोलते हैं कि हमारे को भगवद गीता डेली पढ़ना चाहिए, तो अभी महाराज जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा भगवद गीता दो बार मैं पढ़ चुका हूँ और अभी भागवतम अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो क्या मेरे को भगवत गीता छोड़ के भागवतम पढ़ना चाहिए या भगवत गीता भी पढ़ना चाहिए साथ में, ऑप्शनल क्या है मेरे लिए महाराज?
अगर आपके पास समय नहीं है और गीता दो बार पढ़ ली है फिर वही समय भगवतम में दे सकते हो। पॉइंट है ग्रंथों को पढ़ो, चाहे गीता हो या भागवतम हो या चैतन्य चैतन्य हो, ग्रंथों को पढ़ोगे तो बुद्धि तेज रहेगी, बुद्धि तेज रहेगी तो माया को आसानी से दूर कर सकोगे। तेज सात चाकू से काटने में आसानी होती है या नहीं? अपने बुद्धि को तेज चाकू जैसे बना दो, जैसे माया आएगी बाउंस बैक। Is that right?
हरे कृष्ण महाराज। महाराज आई जस्ट वांट टू आस्क कि जब हम लोग मैनेजमेंट में होते हैं तो बहुत सारे अनर्थास आते हैं।
I'm sorry, please बोलिए।
There are many anarthas which come due to management services. So how to get rid of them?
Anarthas in the sense that you become proud or is that what you mean? I'm now the controller.
Sometimes we feel that we are doing some Vaishnava Prads.
You're not doing Vaishnava Prad if you're speaking the truth. Suppose you see someone doing something incorrect and you point it out. That's not Vaishnava Prad. In fact, if you don't point out, that's an aprad. But even if you point out, do it gracefully, gently and humbly. Then it's not a Vaishnava Prad.
Thank you, Maharaj. Thank you.
Yes.
Hare Krishna, Maharaj.
Yes. पूछे पूछे।
माला भी करते रहते हैं तब भी हमारे रेगुलर कर रहे हैं, 16 माला भी कर रहे हैं और नियम भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इट हैपेंस कि आवर अनर्थर्स एक्चुअली आर नॉट रियली गोइंग. हम लोग किसी को भौतिक एडवांसमेंट करने देखते हैं तो वी फील कि वी कुड हैव डन दैट, मेरे बच्चे इतने एडवांस कर सकते थे. मतलब मंदिर में है तब वी आर टोटली इन स्पिरिचुअल, ये आफ्टर गोइंग होम एंड इनटू ऑफिसेस वो चीज़ रह जाता है कि मटेरियल एडवांसमेंट में की भी इच्छा रह जाती है. तो वो चीज़ क्यों नहीं जा रही, मटेरियल एडवांसमेंट की इच्छा नहीं जा रही, अभी भी थोड़ी सी रह रही है, वो कैसे जाएगी?
थोड़ी सी रह रही है तो दैट इज गुड न्यूज. Yeah, that is very good news. सिंगल लगा थोड़ी से जा रही है. अगर आप कहते बिल्कुल ही जा रही तो वो खतरनाक था. तो अगर कोई बीमारी हो काफ़ी समय से तो बीमारी को दूर होने में थोड़ा समय लगता है. इसलिए कहा गया है अंत तक इन विधियों का पालन करना है, यही नहीं कि 5 साल के कोटा नहीं करना. भगवान कहते हैं यज्ञ दाना तपस्या, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहिए. अब अंत तक करोगे तो फिर भगवान भी आपकी सुरक्षा करेंगे. हमारे में विश्वास होना चाहिए. 18 अध्याय में 2 श्लोक हैं अंत में, मन मन बाबा मन भक्तो मध्याजी माम माँ में वाच सत्यम देव प्रतिजन पुरुष में. भगवान कहते हैं ये 4 चीज़ों करोगे. फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं, मेरी शरण में आओ घबराओ मत. ये सब करोगे तो बिना शंका के वे धाम में जाओगे. पर हम कहते हैं हाँ सच है सच नहीं भी है क्या प्रमाण. वो है हमारी समस्या. ओके और
महाराज जैसे आपने हरे कृष्ण
यस,
तो महाराज जैसे कि अभी बाहर जो व्यक्ति भक्ति में नहीं जुड़े हैं अगर उनको प्रचार करने जाते भी हैं और कोई कुछ अगर बुरा व्यवहार भी करता है उसको सहना.
फिर से बोलिए.
हरे बाहर के व्यक्तियों को प्रचार करने के लिए कुछ सेवा में जाते भी हैं अगर कोई अच्छा व्यवहार नहीं भी करता है तो उसको सहन करना काफी आसान हो जाता है. वो इतना बार पढ़ने के बाद इतना सुनने के बाद तो उससे ज्यादा दुख फील नहीं होता, उससे ज्यादा बुरा नहीं लगता. लेकिन अगर कहीं भक्तों के समाज के अंदर अगर कोई इस प्रकार से कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ अगर कहता है होता है तो उसे सहन, और अगर किसी प्रकार से उसको सहन कर भी लिया जाए तो लेकिन अंदर अंदर वो भक्ति के लिए उत्साह जो है वो कुछ कम हो
जाए. हाँ समझ गया. अगर आप देखते हो कोई भक्त ठीक व्यवहार नहीं कर रहा या कोई छेड़ रहा तो भी हमें सहनशील होना चाहिए. नारद मुनि देखो दक्षा उनको श्राप दे रहे हैं तो भी वो कह रहे हैं. दक्षा भी एक रूप से भक्त था, वो कोई कर्मी नहीं था. तो ये नहीं कि भक्तों में कमी नहीं है पर हमें सह लेना चाहिए. ये सोचे भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं और अगर आप ठीक कार्य करोगे भगवान खुद ही आपकी सुरक्षा करेंगे. जो गलत कार्य कर रहा है उसको डर भोगना पड़ेगा. कई बार हम कहते हैं वो गलत काम कर रहा है, जो गलत काम भगवान हर चीज के एक साक्षी है, इसमें विश्वास रहना चाहिए. ओके
हरे हरे कृष्ण महाराज जी. एक क्वेश्चन है मेरा भी महाराज. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बिजी शेड्यूल में समय दिया और एसोसिएशन के लिए आप हमें मौका मिला आपकी. और मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार ये हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर या इन्होंने जो निवास स्थान बनाया हमारा मन बुद्धि और हमारी इंद्रियों को बनाया है, हम लोग चाहते हैं कि इनसे मुक्ति पाए, पर्टिकुलर मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, परंतु जब इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कि जिस समय हम क्रोध ना करें उसमें क्रोध हो जाता है महाराज, तो इनसे विजय नहीं प्राप्त की जा रही अपने प्रयासों के द्वारा, तो महाराज क्या करना चाहिए ताकि हम प्रयास से मुक्ति पा पाए।
इंग्लिश में कहावत है, आपने भी सुना होगा, ट्राई ट्राई अगेन यू विल सक्सीड एट, तो ट्राई करते जाओ। अमेरिका में कार रेंटल कंपनी है एविस, एयरपोर्ट में आप मुर्गी मोटरों को किराए पर ले सकते हो, तो उनका एक स्लोगन है वी ट्राई हार्डर, मतलब कि दूसरे व्यापारियों से हम ज़्यादा प्रयास करते हैं तुम्हें खुश करने के लिए, तो आप प्रयास करते जाओ, डोंट बी डिफीटेड।
थैंक यू महाराज, काफ़ी अच्छा लेक्चर था आपका। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आप हर लेक्चर में बताते हैं कि हमें कोई भी हमारे भक्ति में कुछ भी बाधाएं आ रही तो हमें अपनी साधना स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं कैसे मतलब अपनी चैंटिंग और जो बुक रीडिंग करते हैं हम, क्या भाव होना चाहिए हमारा, कैसे हम ध्यानपूर्वक और ज़्यादा अच्छे से हम चैंटिंग और बुक रीडिंग कर सकते हैं।
चैंटिंग करो तो चैंटिंग को ध्यान से करो और रीडिंग करो, जब रीडिंग कर रहे हो ये सोचो कि भगवान उनके संदेश अभिन्न है, जब आप गीता पढ़ते हो एक रूप से आपको समझना चाहिए आप भगवान के साथ बैठे हो, जब भगवान अप्रकट हुए उनके सनातन साथी अर्जुन अत्यंत दुखी थे, अर्जुन ने उन घटनाओं का स्मरण आरंभ किया जो कि भौतिक दृष्टि से असंभव थी, पर उनके मित्र के सहयोग से सफलता प्राप्त हुई, फिर अर्जुन ने गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया, जब गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया उन्हें ऐसे लगा कि भगवान वहाँ है, तो गीता पढ़ो ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भगवान की वाणी है। कैसे नहीं मेरा स्टॉप ना हो, एक दो क्वेश्चन फिर हो
महाराज। महाराज आपने कहा कि एक भक्त को आरामदायक जीवन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन शुरू से ही हमारा ट्रेनिंग ऐसे हुआ है कि सुख का मतलब आरामदायक जीवन, तो कैसे इस आलस की भावना से ऊपर उठा जाए, इस संसार में उसको स्मार्ट माना जाता है जो तपस्या से बच जाए, मुश्किल कार्यों से बच जाए, उसको लेजी इंटेलिजेंट भी बोला जाता है।
लेजी इंटेलिजेंस वाले वजन में बढ़ जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, दूसरों से ही काम कराते हैं,
दूसरों से उसको स्मार्ट माना जाता है, और जो बेचारा पिलता रहता है।
तो प्रश्न क्या है,
तो शुरू से उसी को अच्छा माना जाता है जो दूसरों से काम निकलवा ले खुद आराम से बैठे, तो अब यहाँ लिखा जाए कि भक्त को आराम दे,
खुद आराम से बैठोगे कोई आपके शब्दों में इतना कदर नहीं करेगा, आप देखोगे कोई देखेगा आप खुद भी प्रयास कर रहे हो, फिर आपके वचनों में ज़्यादा श्रद्धा होगी। सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को मिले, उन्होंने कहा कई लोग आचार है प्रचार नहीं, कई में प्रचार है और आचार नहीं, पर आप में दोनों ही गुण हो, लोग देखते हैं आचार भी और प्रचार भी, आप दूसरों को हुक्म देते जाओगे ये करो ये करो ये करो और आप 8-9 घंटे विश्राम कर रहे हो, तो लोग कहेंगे ये अच्छे साहब हैं हमारे।
महाराज आलस की लेजीनेस से कैसे ऊपर उठा जाए, लेजीनेस जो रहता है,
लेजीनेस से उठने का एक ही उपाय है कि समय की कदर समझो, इच्छा के बंद का एक पल का भी दुरुपयोग करोगे वापस धन से, पृथ्वी के धन से वापस नहीं ला सकते, दो दिन पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ा जो मैंने पहले भी पढ़ा था। उन्होंने एक सर्वे किया था 5,000 फैमिलीज के साथ, एक साइंटिफिक सर्वे। उनका ये निर्णय था जो व्यक्ति 9 घंटे से ज़्यादा विश्राम करते हैं उनको 30% हार्ट अटैक ज़्यादा आने का संभावना है, और जो कि 8 घंटे से कम विश्राम करते हैं उनका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आर्टिकल आपको मैं दे सकता हूँ क्योंकि अगर टाइम्स ऑफ इंडिया में आए तो हम कहेंगे शिव भगवान हो अच्छा, और जब प्रभुपाद कहते हैं तो हम कहते हैं हाँ शायद सच नहीं हो। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था एक साइंटिफिक स्टडी का। तो आलसी बनना है तो आलसी बनना भी खतरनाक है। अमेरिका में दुनिया के सबसे ज़्यादा ओवरवेट लोग हैं। ओवरवेट समझते हो, आवश्यकता से ज़्यादा वजन। उसका कारण पता क्या है? अमेरिकन आर वेरी लेजी पीपल। जिधर जाना है मोटर में जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैक्सिमम ओवरवेट पीपल दुनिया में अमेरिका में। अभी समाप्त करना पड़ेगा। हाँ बोले।
थैंक यू महाराज। महाराज आप जैसे इसमें गुणों का विवरण कर रहे थे तितिक्षुआ, तो बीइंग यू आर द बेस्ट प्रीचर फॉर अस, मतलब आप अपने एग्जांपल से शो कर रहे हैं कि हाउ नॉट टू बी इजी गोइंग। और मेरा प्रश्न ये था महाराज कि जिस प्रकार से आपने सहनशीलता के ऊपर बल दिया, तो हम देखते हैं कि विभिन्न भक्तों में विभिन्न स्तर की सहनशीलता रहती है। मतलब जब हम प्रयास कर रहे हैं ऐसे साधक का, सो देर आर कोर्सेज कि मतलब किस इस संघर्ष में क्या होता है कि कभी हम सहन कर जाते कभी नहीं करते। तो पहला क्या मापदंड होना चाहिए कि किस लेवल तक हमें सहन, क्या सहन करना चाहिए, किस स्पिरिचुअल लाइफ में किस चीज़ को, क्योंकि कभी हम अपमान सहन कर सकते हैं लेकिन कभी कभी मान मिलता है तो उसे भी सहन करना एक बहुत बड़ी बात होती है कि मान मिल गया तो हम फूल जाते हैं।
मान को सहन करना अपमान से ज़्यादा कठिन
है।
कठिन है कैसे? जब मान मिलता है तो हम कहते हैं देखो हम कितने अच्छे हैं, हर चीज हम कहते हैं फर्स्ट क्लास। तो ये मान को सहन करना ज़्यादा कठिन है। हम सोचते हैं अपमान को, जब कोई अपमान करे तो हम क्रोधित हो जाते हैं और कोई मान दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। पर अपमान को असल में सहन करना अपमान से ज़्यादा कठिन है, क्योंकि मान कोई आपकी तारीफ कर रहा है और आप सोचो देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे में क्या कला है, तो ये ज़्यादा कठिन है। अगर आप सोचो कि हमें कोई गुण नहीं है वो ज़्यादा बेहतर है।
जब कभी हमारे बीच में कभी ऐसा हो जाए कि सहनशीलता का बांध टूटे और मतलब जैसे somebody हम गुस्सा हो जाए या कुछ हो जाए, तो what should be our course of track, मतलब हमें एक भक्त को क्या करना चाहिए कि मतलब जब ये स्थिति के ऊपर हो जाता है तो जैसे सहनशीलता, जैसे हमारी सहनशीलता से हम नहीं कर पा रहे और हम गुस्सा हो गए या फिर कोई अलग ट्रैक में गए, तो एक भक्त का क्या कोर्स होना चाहिए उसके बाद जब ये हो जाए एक्टिविटी की बात? तो
मतलब कि
जैसे हम
ये नहीं करो फिर से नहीं करोगे
और आपस में महाराज
कहते ना वंस बिटन ट्वाइस शाय, वंस यू मेक अ मिस्टेक ट्राई नॉट टू रिपीट इट। यू नो देयर आर सम फॉरेनर्स एंड सम स्टूडेंट्स, ये काफी देर से बात कर रहे हैं। ओके आई थिंक वी स्टॉप। अच्छा लास्ट क्वेश्चन माता जी का। 15 आने तो ये स्टूडेंट्स यस
हरे कृष्णा महाराज दंड प्रणाम महाराज जैसे हम पढ़ते भी हैं सुनते हैं कि जो भक्ति है अप्रतिहता अहेतु की होनी चाहिए और उत्तम भक्ति का जो गुण है वो है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम और जैसे हम अभी आपने भी बताया और पढ़ा भी कि कुंती महारानी या जो भक्त है वो कहता है कि मुझे और कष्ट मिले ताकि मैं भगवान का स्मरण कर सकूं बट महाराज जैसे ही कष्ट आते हैं और भगवान का स्मरण जो होता है वो स्पिरिट होती है कि मेरे कष्ट दूर हो जाए मतलब वो इसी स्पिरिट में ही भगवान का स्मरण होता है उससे ज़्यादा कुछ और स्पिरिट नहीं होती तो महाराज अगर ऐसे ही चलता रहा कि कष्ट आए और यही स्पिरिट बनी रही तो भक्ति में जो है वो प्रोग्रेस कैसे करेंगे
भक्ति में प्रोग्रेस कैसे करेंगे अगर बार बार भगवान का सोचते रहोगे बार बार कष्ट आ रहे हैं और भगवान से कह रहे हो भगवान का स्मरण कर रहे हो ना कष्ट आ रहे हैं तो भगवान का स्मरण करते हो तो ये अच्छा है बार बार कष्ट आ रहे हैं तो बार बार स्मरण करो कई बार जब सुख हो तो हम भगवान को भूल जाते हैं दुख हो तो याद करते हैं ठीक बात है जैसे आप देखते हैं समाज में कि जो धनी लोग हैं वो मंदिर आते हैं बहुत बहुत कम आते हैं क्योंकि वो सोचते हैं हमारे पास हर प्रकार की सुविधा है हमें मंदिर जाने की क्या आवश्यकता तो इसलिए कहा जाता है कोई बहुत धनी हो बहुत पढ़ा लिखा हो और बहुत खूबसूरत हो बड़ा सुंदर खानदान हो तो आसानी से भगवान के शरणागत नहीं होते ओके हाँ अब बंद करेंगे आप बाद में पूछ लेना अब सब मैराथन कर रहे हो करोगे कितना क्या टारगेट लिया आपने 80,000 जैसे मैंने पिछली दफा कहा था हमारी इच्छा तो ये रहती है 2,50,000 गीता बटेंगी 2,50,000 नए भक्त भी बने 2,50,000 कल ही बने पर आगे कुछ सालों में बन जाएंगे तो चिंता नहीं करना चाहिए और प्रभुपाद जी ने कहा इन ग्रंथ में इतनी शक्ति है कोई एक श्लोक को पढ़कर हमें जीवन में उतार दे उसका जीवन सफल हो जाएगा अनेक व्यक्ति हैं समाज में जो चाहते हैं भगवान की शरण में आने के लिए सिर्फ राह देख रहे हैं कोई भक्त कब मिलेगा हमें फिर से इस संदेश के साथ हरे कृष्णा
गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद इतना इंस्पिरेशनल और इतना सुंदर प्रवचन दिया तो आप सबकी जानकारी के लिए जो हमारा टारगेट है पंजाबी भक्तों का 2.5 लाख भगवत गीता और आप सब तो सही भक्तों ने बहुत उत्साह से भाग ले रहे हैं आप सबका बहुत धन्यवाद और अभी तक लगभग 80,000 भगवत गीता हमारी गोडाउन से निकल चुकी है तो अभी टारगेट दूर है 2.5 लाख है उसमें से 80,000 का स्कोर है तो कुछ ही दिन बचे हैं तो लास्ट लैप में पूरी एनर्जी शक्ति लगा दीजिए खूब प्रार्थनाएं कीजिए ताकि हर साल की तरह इस साल भी हम अपने टारगेट को प्राप्त कर सकें और श्रीला प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकें श्रीला प्रभुपाद भगवत गीता मैराथन की हिजलेनस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे